প্রিয় ভাই ও বেনো, নমো বোধায়, জয় ভীম। And Jai Bheem to all the viewers. I've discovered not only Lord Buddha TV on my television, but Mahabodhi TV as well.
तो उनको भी जय भीम मैं टीवी पर देख रहा था, केवल लॉर्ड बुद्धा चैनल ही नहीं लेकिन महाबोधि चैनल भी इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है।
Last night I tuned into Mahabodhi and there I saw myself on the TV.
तो मैंने महाबोधि चैनल को खोला और मैं खुद ही अपने आप को वहां देखा।
Amitabh Bachchan of Buddha Dhamma. Big S.
बौद्ध धर्म के अमिताभ बच्चन ने बड़े एस।
So we come to our fourth and final exploration.
तो भाई और बहनों, आज के यानी प्रवचन की श्रृंखला में यह आखिरी प्रवचन मैं देने जा रहा हूँ।
We're looking at what it is to be a Dhamma Sevak.
और हम यह देख रहे थे कि जो धर्म के लिए कार्य करता है धर्म सेवक उसके बारे में।
Because we've seen that the Dhamma Sevak is the foundation of the Dhamma Revolution.
क्योंकि धम्म सेवक ही जो अगर धम्म क्रांति लानी है उसकी बुनियाद होगी।
If there's nobody to carry out that Dhamma Revolution, it won't happen.
अगर वो धम्म क्रांति को आगे ले जाने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर धम्म क्रांति नहीं होगी।
If you want a wheel to turn, you need some force to turn it.
अगर आपको चक्र को घुमाना है तो चक्र को घुमाने के लिए किसी ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है।
It's the Dhamma Sevaks who turn the wheel of the Dhamma.
यह धम्म सेवक है जो उस धम्म के चक्र को बल देकर गतिमान करते हैं।
They bring about the Dhamma Revolution.
वही लोग धम्म क्रांति लाएंगे।
We've seen that if we want to be Dhamma Sevaks, we need to know the Dhamma.
और हमने यह देखा कि अगर आपको धम्म सेवक बनना है तो फिर आपको जानना होगा कि धम्म क्या है।
We need to know the science that allows us to grow in the Dhamma.
वो विज्ञान हमें खोजना है जो हमारी प्रगति करता है धम्म जीवन में।
And we've seen that that science is essentially the science of karma.
और हमने वह देखा कि वह जो विज्ञान है वह आपका कार्य कारण भाव है, आपके कर्म है।
It's your actions that change you.
आपके स्वयं के जो प्रयास है, कार्य है, वही आपको बदलते हैं।
Many of you are here for the Maitri Vikas Dhyan Sadhana.
आप में से बहुत सारे लोग मैत्री विकास जो ध्यान साधना है उसके लिए यहाँ थे।
And I'm sure that many of you will have experienced even in half an hour some change in your own mind.
आप में से कई लोगों ने आधे घंटे में ही क्यों ना हो कोई तो परिवर्तन या बदलाव आपने महसूस किया है।
हो
खरा
गुड। वेल दैट्स कर्म।
अब वह आपके कर्म है, आपके कार्य है।
यू've had some practical experience of karma at work.
और आपने यह देखा कि आपके जो कर्म है, आपका जो प्रयास है उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है।
यू आर मेकिंग एन एफर्ट।
अब आप प्रयास कर रहे हैं।
You got a result.
और उसके परिणाम आपको मिलते हैं।
You came in one state of mind. After half an hour, you were in another state of mind.
तो एक मानसिक अवस्था में आधे घंटे के पहले आप थे, फिर उसके पश्चात दूसरी मानसिक अवस्था में आप होते हैं।
Through your own effort, the law of karma created a change.
आपके अपने प्रयासों से आप उन नियमों को, आपके मानसिक अवस्था को बदलते हैं।
So very, very simple lesson.
यह बहुत ही सीधी सी शिक्षा है।
But it takes you all the way to enlightenment.
लेकिन यह रास्ता जो है सीधा बुद्धत्व तक जाता है, संबोधि तक जाता है।
इफ यू रियली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कर्म, एनलाइटनमेंट वुड कम।
अगर आपने सही मायने में कर्म सिद्धांत का आचरण किया तो परिणाम आएंगे।
गारंटी,
इसकी गारंटी है।
यू कैन हैव योर मनी बैक इफ यू डोंट गेट देयर।
आपके पैसे मैं वापस दूंगा अगर ये बदलाव आपको नहीं मिलेगा तो।
सो यस, यू नीड टू नो दिस बेसिक फैक्ट अबाउट धम्म।
तो धम्म के ये बिल्कुल बुनियादी जो तथ्य है उसे जानना जरूरी है।
यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ धम्म।
धम्म के जो मूल तत्व है उसे जानना जरूरी है।
यू डोंट नीड टू नो अ लॉट।
बहुत सारा जानने की आवश्यकता नहीं है.
You don't need to have a PhD in Buddhist studies.
और बौद्ध अध्ययन में आपको PhD की आवश्यकता नहीं है.
It's good if some people have that, but you don't need it to gain enlightenment.
अब कुछ लोगों के पास वह हो तो अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है.
I'll tell you a secret.
मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ.
The Buddha didn't have a PhD in Buddhism.
बुद्ध को बौद्ध तत्व ज्ञान की पीएचडी नहीं थी.
It's good to have PhD, but for practicing the Dhamma, you don't need it.
अब अच्छी बात है आप पीएचडी हो, लेकिन धम्म के आचरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है.
You just need to know the basics of Dhamma.
आपको धम्म की जो बुनियादी शिक्षा है बस उसकी जानकारी चाहिए.
So that's the first thing, you need to know Dhamma.
तो यह पहली बात है, धम्म को आपको जानना है.
You need to practice Dhamma.
और उसके पश्चात आपको उसका आचरण करना है.
No use knowing if you don't do.
उस जानने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे करते नहीं है.
There's no use in having qualification as a doctor if you don't help people to be cured.
अगर आप डॉक्टर हैं और आप लोगों को सुधरने के लिए या बीमारी से अच्छा होने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं तो उस डॉक्टरी का कोई फायदा नहीं है.
There's no use being a lawyer if you don't get up in court.
वकील होने का कुछ फायदा नहीं है अगर आप लोगों को न्याय नहीं देते.
There's no use knowing Dhamma if you don't practice it.
वैसा ही धम्म को जानने का कोई अर्थ नहीं है अगर आप उसका आचरण नहीं करते.
The Dhamma is for practicing.
धम्म का अर्थ ही या धम्म है ही आचरण करने के लिए.
And we've seen that that means following the path of Shila, Samadhi, Prajna.
और हमने फिर देखा उसे कैसा करते हैं, तो हम शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग से हम उसे करते हैं.
We've seen that it means developing integration.
हमने देखा कि अपने आप को एकत्रित करना, इकट्ठा करना.
It means developing positive desires, wishes.
अच्छी या विधायक कुशल जो इच्छा है उसका विकास करना.
It means being receptive to what goes beyond your present experience.
और उसके प्रति ग्रहणशील होना कि आपके अनुभव के परे भी कुछ है.
It means letting go of your self-identification.
हमारा जो अहंग के साथ हमारी जो आसक्ति है उससे मुक्त होना.
Letting go of dying to selfishness.
स्वार्थ के लिए जो जीते हैं वैसे जीवन को खत्म करना.
It means opening up to being reborn in a new selfless identity.
और ऐसे नए निस्वार्थ जीवन के लिए तैयार होना, उसके लिए पुनर्जन्मित होना एक दृष्टिकोण से.
We need to be doing that in every area of our lives, whatever we're doing.
हमारे हर जीवन के क्षेत्र में हमने यह करना चाहिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं.
When you're in your office, you can be practicing Dhamma.
अब आप आपके कार्यालय में हैं तो आप इसका आचरण कर सकते हैं.
When you're making chapatis, you can be practicing Dhamma.
अब आप जब चपाती पकाते हैं तब इसका आचरण आप कर सकते हैं.
When you're sitting on your scooter, you can be practicing Dhamma.
जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तब आप इसका आचरण कर सकते हैं.
Very important to practice Dhamma when you're on your scooter.
जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है आप इसका आचरण करें.
In every area of your life, you can be practicing Dhamma.
हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमने इसका आचरण करना चाहिए.
Particularly you need to practice Dhamma in your family, in your work.
आपके कार्य में और आपके परिवार में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम धम्म का आचरण करें.
And then yesterday we saw that we must join Sangha.
और कल हमने देखा कि यह भी आवश्यक है कि हम संघ के पास रहे या संघ के सदस्य बने.
We saw 8 men and women yesterday join our Sangha.
कल हमने देखा कि 8 लोगों ने इस संघ के साथ अपना रिश्ता जोड़ा.
I don't mind which Sangha you join, but join Sangha.
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी संघ में जाइए लेकिन संघ के समीप रहिए.
We can all be in harmony whatever Sangha we belong to.
किसी भी संघ से हम क्यों ना हो, हम सबके साथ सुसंवादित रह सकते हैं.
But get more deeply involved with others.
लेकिन औरों के साथ आप गहरा संपर्क बनाइए.
Go deeper in your communication with them.
आपके संपर्क में आप गहरे जाइए.
Practice the Dhamma together.
और धम्म का इकट्ठा आचरण कीजिए.
Learn the Dhamma together.
धम्म को इकट्ठा सीखिए.
So that's what we've seen so far.
तो यह हमने कल तक देखा.
Today we come to our fourth topic.
तो आज हमारा चौथा विषय है.
If we want to serve the Dhamma, we must spread Dhamma.
अगर हमें धम्म की सेवा करनी है तो हमें इसे इसका प्रसार करना होगा.
We must share Dhamma with others.
इस अनुभव को या इस धम्म को औरों के साथ बांटना होगा.
This is so important.
यह बहुत महत्वपूर्ण है.
In some ways, this is the most difficult of the three of the four factors we're talking about.
This is the most difficult.
तो जो चार आयाम हमने देखे इसमें सबसे कठिन यह बात है.
But it's the most important in the end.
लेकिन अंततः यह सबसे महत्वपूर्ण है.
Baba Saheb became a Buddhist and led so many into Buddhism in order to change society in India.
बाबा साहब स्वयं बौद्ध बने और अपने अनुयायियों को कई लाखों अनुयायियों को उन्होंने बौद्ध धर्म में लाया क्योंकि वह भारतीय समाज को बदलना चाहते थे.
He knew that liberty, equality and fraternity had to be based on deep principles.
वह जानते थे कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता गहरे तत्वों के आधार पर ही खड़े हो सकते हैं.
And he saw that in the Buddha Dhamma, those deep principles were represented in the clearest and most powerful way.
और उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म में यह जो तीन मूल्य है यह काफी गहरे स्पष्ट और प्रबलता के साथ दर्शाते हैं.
He wanted those principles in the Dhamma to influence the whole of India.
वह चाहते थे कि इन मूल्यों से वह समूचे भारत को प्रभावित करे.
Maybe not everybody would become a Buddhist.
जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बौद्ध होगा.
But those principles deep in the Dhamma, he thought would have a big effect on the whole of India.
लेकिन वह यह जानते थे कि यह जो मूल्य जो गहरे है धम्म में इसका प्रभाव औरों के ऊपर निश्चित होगा.
He thought they'd have a big effect on the whole world.
वह उन्होंने सोचा कि इसका प्रभाव सारे विश्व पे होगा.
He thought that on the basis of those principles, liberty, equality and fraternity would come to India.
और वह जानते थे कि इन तत्वों के आधार पर समता, स्वतंत्रता और बंधुता आ सकती है.
He thought that on the principles of the Dhamma, caste would burn away.
वह जानते थे कि इन धम्म तत्वों के आधार से जाति जो है उसको जला दिया जाएगा.
He thought a fire of the Dhamma would burn up all these terrible divisions of caste.
वह जानते थे कि यह जो धम्म ज्योति है, धम्म की ज्वाला है, यह जो विभाजित समाज है जाति पर उसको जलाएगा.
He lit a flame here that he thought would burn up caste throughout India.
उन्होंने उस ज्योति को यहाँ जलाया या प्रज्वलित किया जिससे जाति जल जाएगी.
Not just a jyoti, but a fire. A flame.
ज्वाला.
ज्वाला. Okay, ज्वाला is ठीक है. तो बहुत बड़ा ज्वाला.
बहुत बड़े ज्वाला को उन्होंने यहाँ प्रज्वलित किया जिससे जाति जल जाएगी.
Now, brothers and sisters, quite a lot has happened in the last 50 or more years.
लेकिन भाई और बहनों पिछले 50-60 साल में काफी कुछ परिवर्तन आया है.
We don't know how many Buddhists there are in India now, but perhaps there are 3 crore, maybe 4 crore.
अब मुझे पता नहीं भारत में कितने बौद्धों की संख्या है, लेकिन 3-4 करोड़ जरूर होगी.
Maybe there are more.
हो सकता है उससे अधिक हो.
But, लेकिन, brothers and sisters, caste continues in India.
लेकिन भाई और बहनों जाति फिर भी भारत में जीवित है.
There's still so many divisions in Indian life.
भारतीय जीवन में ऐसे बहुत विभाजन है.
The flame of the Dhamma has not reached every heart in India.
तो वह जो धम्म की ज्वाला है वह भारत के हर दिल के कोने तक पहुंची नहीं है.
Still the caste mentality, that old monkey mentality, continues in India.
तो यह जो जाति मूलक जो मन है, जो बंदर का मन होता है, वह अभी भी जीवित है.
That's all it is. It's just group mentality, herd mentality.
ग्रुप मेंटालिटी एंड
हर्ड मेंटालिटी
पैक. यह वही एक समूह को या समुदाय को बनाने वाली व्यवस्था है जो बंदिस्त है.
It just continues, huh?
और यह सातत्य से निरंतर चल रही है.
We've still got so much to do.
बहुत सारा कार्य अभी करना बाकी है.
And we must face the fact that mostly the Buddha Dhamma is only has only touched one or two communities in India.
और हमने अभी देखा कि केवल एक या दो समुदाय को ही बौद्ध धर्म ने स्पर्श किया है.
We've got so much to do.
बहुत सारा कार्य करना बाकी है.
And we've got a lot still to do with our own minds.
सबसे पहले तो बहुत सारा कार्य हमारे अपने मन के ऊपर करना है.
We know we're Buddhists, huh?
अब हम जानते हैं कि जो हम बौद्ध हैं.
But we tend to think of Buddhism as of Buddha, Buddhist, it's like a new caste identity.
लेकिन बौद्ध लोग भी उसको एक नए जाति की पहचान समझकर जीते हैं.
Even yesterday in this hall, I heard the word "हमारे समाज."
कल भी मैंने यह शब्द सुना, हमारा समाज.
And when I first came to India, I heard this word, our community, society.
जब मैं पहली बार भारत में आया, मैंने यह शब्द सुना, हमारा समाज.
And I was quite confused.
और मैं थोड़ा सा संभ्रमित हो गया.
Because in my country, when we say society, we mean the whole body of citizens of England.
जब मैं हमारा समाज इंग्लैंड में कहता हूँ, तो वहाँ उस समाज का या उस देश का हर एक नागरिक जो अंग्रेजी समाज का सदस्य है.
I'm part of English society, huh?
तो मैं अंग्रेजी समाज का सदस्य हूँ.
Which has got many divisions and many grades, of course.
वहाँ पे भी विभाजन है और ऐसे असमानताएं जरूर है.
It's not perfect in Britain, I assure you.
और वहाँ कोई आदर्श समाज है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वहाँ नहीं है.
But when we say the word society, we mean all British people.
लेकिन जब मैं उस जब समाज को हम कहते हैं, तो अंग्रेजी समाज के सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं.
But what do you mean when you say हमारे समाज in India?
लेकिन जब भारत में हम हमारा समाज कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है?
Well, you know what you mean.
अब आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है?
आपले लोग,
हमारे लोग.
आपले लोग, आपले लोग नहीं. That's what we mean.
वह यहाँ अर्थ होता है.
A notion, a word that in English means everybody, here means only part.
तो जो शब्द अंग्रेजी में मैं समझता हूँ जो सभी लोगों को सम्मिलित करता है, जब यहाँ मैं सुनता हूँ तो वह एक उसका समाज का छोटा सा हिस्सा या समुदाय होता है.
I felt embarrassed when I heard that yesterday.
कल जब मैंने यह सुना तो मुझे विचित्र लगा.
Because I know there are people here from different communities.
मुझे भली बात ही पता है कि यहाँ और भी समाज से या अन्य समुदाय से लोग यहाँ हैं.
Used to belong to different communities. They used to belong to different communities.
तो पहले वो किसी समुदाय के हो गए या थे.
I come from a different community.
मैं एक अलग समाज से आता हूँ.
And when you say हमारे समाज, you separate yourself from other people.
तो जब आप हमारा समाज कहते हैं, तो और लोगों से आप उनको या अपने समुदाय को विभाजित करते हैं.
When you become a Buddhist, सभी लोग हमारे लोग है.
समझला? जोरात हो मना. जब हम बौद्ध बन जाते हैं, तब सभी लोग हमारे लोग हो जाते हैं.
सर्व लोग आपले लोग आहे. That's the essence of being a Buddhist.
तो यह बौद्ध होने का अर्थ है.
That's what you're saying when you say I am a Buddhist.
यह अर्थ होता है जब आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूं.
You're saying I stand on Maitri.
आप जब कहते हैं कि मैं अभी मैत्री के बुनियाद पर खड़ा हूं.
I don't have maitri for mere log.
तो मैं मैत्री करता हूं केवल मेरे लोगों के लिए.
And not for dusre log.
और उनके लिए मैं मैत्री नहीं करूंगा.
But for sabhi log. For sabhi log.
लेकिन हम सब लोगों के लिए करते हैं.
He didn't recognize my Hindi. That's the essence of being a Buddhist.
तो यह बौद्ध होने का मूलभूत अर्थ है.
Otherwise, Baba Sahib was wasting his time here.
नहीं तो बाबा साहब यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे.
He could have stayed in his old religion.
हो सकता है वो जो पुराने धर्म में है वहीं पे वो रुके होते.
The old religion had all those caste distinctions already.
तो जो जाति के मूलक विभाजन जो था वह वहाँ वैसे ही मौजूद था.
When Baba Sahib said Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami, he meant gone is caste.
जब उन्होंने बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संघंग शरणं गच्छामि कहा, तब उन्होंने जाति को पीछे छोड़ दिया था.
When he took those 22 pratigyas, he meant that's the end of caste for me.
जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, तब उन्होंने बोला कि मेरे लिए जाति अभी नष्ट हो गई है.
When he said I feel as if I've been released from hell, I feel as if I've been reborn, he meant released from the hell of caste.
तो जब उन्होंने ऐसा कहा तब उन्होंने यह सोचा कि मैं इस जातिवाद के नरक से मुक्त हो रहा हूँ, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है और मैं इस व्यवस्था से अभी मुक्त माना हूँ.
He meant reborn into the casteless society.
पुनर्जन्म का उनका अर्थ जाति विहीन समाज का सदस्य होना था.
That's the whole point.
यह पूरा मुद्दा है भाई और बहनों.
The essence of being a Buddhist for us immediately is leaving completely our caste identity.
बौद्ध होने का जो मूलभूत सार जो है, हम जाति के पहचान को पीछे छोड़ देते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं.
We open up to every human being.
हम हर इंसान के लिए अपने आप को खुला करते हैं.
And into our Buddhist Sangha, we welcome everybody from whatever caste background.
और इस संघ में हम उन सभी का स्वागत करते हैं वो किसी भी जाति समुदाय से क्यों ना हो.
Because they leave that caste identity.
क्योंकि वह उस जाति के पहचान को छोड़ देते हैं.
As I said yesterday, the Buddha said, all the great rivers of India flow into the ocean.
जैसे कि मैंने कल बताया था कि सभी भारत की जो नदियां हैं वह समुद्र में जाती है.
The Brahmaputra, the Ganga, the Kauri, the Krishna, the Narmada.
यह सब नदियां.
And when they're in the great ocean, you can't take some water and say, ah, this is Ganga water.
तो उस समुद्र से जब आप थोड़ा सा पानी उठाते हैं तो आप नहीं कह सकते कि यह गंगा का पानी है.
This is very pure water because it comes from Ganga, Holy Mother Ganga.
अब यह बहुत पवित्र है क्योंकि यह गंगा से आया हुआ है.
The most polluted river in India.
अब वह बहुत दूषित भी अभी हो गई है.
You can't say, oh, this is from the Indriani.
अब इंद्रायणी जो नदी है वहां का वो पानी है, ऐसा आप उस पानी को नहीं पहचान सकते.
It's just the Indian Ocean.
वह केवल भारत का पानी है.
You can't tell any difference.
अब उस पानी में आप कुछ फर्क नहीं कर सकते.
When we come into the Buddha Dhamma, we leave behind our old identity.
तो जब हम बौद्ध धर्म में आते हैं तो इस प्रकार का जो पुरानी जो पहचान है उसे हम छोड़ देते हैं.
My अंग्रेजी नहीं है.
I'm not Englishman.
My Bauda है.
I am Buddhist.
ये वाला
मैं अंग्रेजी व्यक्ति नहीं हूं.
Definitely not. Yeah, you leave behind your old identity.
तो इस प्रकार की जो हमारी पुरानी पहचान है उसे हम छोड़ देते हैं.
That's what Baba Sahib was looking for.
इसी को बाबा साहब देखना चाहते थे.
You know what he did?
अब आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया.
You know, Baba Sahib was a very deeply studied man.
Deeply studied.
आप जानते हैं कि बाबा साहब गहराई से पढ़े हुए या विद्वान व्यक्ति थे.
He read in Christianity, he read in Islam, he read in Sikhism.
तो इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिज्म जो है सभी धर्मों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था.
Yeah, सभी धर्म. He read everything. He read in all religion.
और सभी
He read about all religions.
सभी धर्मों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था.
And he found that in the Buddha Dhamma, there's real freedom.
और उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म में सही मुक्तता है, मुक्ति है.
You know what every other religion has done in India.
आपको पता है कि हर धर्म ने भारत में क्या किया.
You know that in Goa, most of the bishops, most of the priests came from a certain caste.
अब गोवा के बिशप्स को आप देखिए वह किसी विशिष्ट जाति से ही आते हैं.
You know that outside the churches, certain people had to sit.
अब चर्च के बाहर किस समुदाय के लोगों को बैठना होता है.
I've been to Punjab.
मैं पंजाब गया था.
One small village.
एक छोटे से गांव में मैं गया.
Two gurudwara.
वहाँ पे दो गुरुद्वारा थे.
One for one community, one for another.
एक एक समुदाय के लिए जाति के लिए दूसरा दूसरे जाति के लिए.
That's what I saw.
यही मैंने देखा.
And that you see the same even in Islam.
और यही इस्लाम में भी हम देखते हैं.
We have to Sikhism started by rejecting caste.
आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म जो है वह जाति को नष्ट करने के लिए उसकी बुनियाद थी.
Islam doesn't have any caste.
और इस्लाम धर्म में जाति नहीं है.
But caste mentality goes on.
लेकिन जो जाति की जो मानसिक अवस्था है वह अभी भी जिंदा है.
There's no caste in Christianity.
अब ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं है.
But the caste mentality takes over.
लेकिन जो जाति मूलक मानसिक अवस्था है वह हावी होती है.
It must be different with Buddha Dhamma.
यह निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में अलग होनी ही चाहिए.
Otherwise, let's stop saying Jai Bhim.
नहीं तो फिर आप जय भीम कहना बंद कर दीजिए.
Because Jai Bhim means casteless society.
जय भीम का अर्थ ही जाति विहीन समाज है.
Jai, if Bhim is to have victory,
जय का अर्थ जीत होती है, आपकी कामयाबी होती है.
It means the end of caste distinction.
इसका अर्थ जाति को नष्ट करना या जाति भेदाभेद को नष्ट करना.
It means liberty, equality and fraternity.
और इसका अर्थ है समता, स्वतंत्रता और बंधुता.
That's the whole essence of Baba Saheb's conversion.
यही बाबा साहब के धम्म क्रांति का सार है.
So the first thing we must do is get rid of that notion in our own mind.
तो हमारे मन से इस धारणा को, इस मानसिक अवस्था को नष्ट करना है.
Baba Saheb said that caste is a notion, a state of mind.
बाबा साहब कहते थे कि जाति जो है यह मानसिक धारणा है, मानसिक अवस्था है.
He said it's not a brick wall between beings.
यह दो इंसानों में कोई दीवार बांधी है ऐसा नहीं है.
It's not a line of barbed wire.
यह कोई रस्सी खींची गई हो दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा नहीं है.
It's an idea that we have in our mind.
यह ऐसी कल्पना है, ऐसी धारणा है जो हमारे मन में धसी हुई है.
If somebody has a needs some blood, they can have it from any community.
अगर किसी को खून की आवश्यकता है तो किसी भी समाज से या जाति से उसको मिल सकती है.
A kamble can give blood to a joshi.
अब कामड़े का जो खून है वो जोशी को चल जाएगा.
जोशी can give blood to a meshram.
अब जोशी का जो खून है वो मेशराम को चल जाएगा.
It doesn't matter.
इससे फर्क नहीं पड़ेगा.
The blood hasn't got special caste identity.
क्योंकि उस खून का, लहू का कोई जाति विशेष भाव नहीं है.
It's just an idea.
यह केवल मन की धारणा है.
We must get it out of our mind.
हमने हमारे मन से इसे उखाड़ फेंकना चाहिए.
There should be a sign up on the gate to the Dikshabhumi, this is a caste-free area.
Dikshabhumi ke gate ke paas, aap aisa ek board banana chahiye ki yah jati mukt kshetra hai.
No smoking, no caste.
Dhumrupan nishedh, jati ka nishedh.
That should be the essence of coming here.
Yahi yahan aane ka maksad hai, matlab hai.
I was very, very pleased yesterday. A friend who's from a different community told me that she felt here that she was free from caste.
एक दूसरे समुदाय के मित्र ने मुझे यह बताया कि उन्हें ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल जाति से मुक्त हुई हूँ.
I was so proud of us.
मैं इस दृष्टिकोण से आप सब लोगों का स्वाभिमान करता हूँ या अभिमान करता हूँ.
Here nobody was trying to find out her background or her caste.
यहाँ कोई भी किसी की जाति ढूंढने के पीछे लगा नहीं है.
Everybody was just accepting her as another human being.
हर व्यक्ति यहाँ दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार कर रहा है.
That's not what usually happens in India.
अक्सर भारत में ऐसा होता नहीं है.
I know that in India everybody's got a sixth sense, I always say.
भारत में हर किसी को छह इंद्रिय है.
In England we've only got five senses.
इंग्लैंड में सब लोगों को पांच इंद्रिय है.
We've got eyes, ears, nose, tongue, body.
तो कान है, आंख है, नाक है, जीवा है और त्वचा है.
But in India, you got one more sense.
लेकिन भारत में और एक इंद्रिय है.
Caste sense.
वह है जाति का इंद्रिय.
And caste sense is nonsense.
अब वो जाति का इंद्रिय जो है वह मूर्खता पूर्ण है.
We must get rid of this notion from our minds.
तो यह जो मन की जो धारणा है उसे फेंकना है.
If we say हमारे लोग, we mean everybody.
जब हम हमारे लोग कहते हैं इसका अर्थ सारे लोग.
So please, I want everybody to really take this very seriously.
मैं यह चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को काफी गंभीरता से लें.
So if we want to spread Dhamma, we need to start by getting caste right out of our minds.
तो अगर आपको धम्म की सेवा करना है तो सबसे पहले अपने मन से जाति को उखाड़ना है, फेंकना है.
I was in a city in Vidarbha. I'm not going to say which city.
मैं एक शहर में था, विदर्भ में. मैं उस शहर का नाम नहीं लूंगा.
And I was in one street.
और मैं एक रास्ते से गुजर रहा था.
One side of the street I saw a vihara.
रास्ते के एक बाजू में विहार था.
Other side of the street I saw another vihara.
और रास्ते के दूसरे बाजू में दूसरा विहार था.
So I thought, well, that's strange. On one street, two viharas.
तो मुझे वह विचित्र लगा, एक रास्ते में दो विहार कैसे हैं?
So I asked, oh, well, what are these two viharas?
तो मैंने पूछा कि ये दो विहार यहाँ किस लिए हैं?
And I heard something very strange.
तो जो मैंने सुना वह काफी विचित्र था मेरे लिए.
That vihara is for this upajati. That vihara is for that upajati.
यह जो विहार है वह उस उपजाति के लिए है और वो जो दूसरा विहार है वह दूसरे उपजाति के लिए है.
ओ बाबा साहब, वीक टीयर्स.
अब बाबा साहब यह सुनते तो वो रो पड़ते.
योर ब्रदर, योर चिल्ड्रन, व्हाट दे आर डूइंग.
वो सोचते कि मेरे ये जो पुत्र है, मेरे जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं.
वी मस्ट लीव दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी बिहाइंड.
तो इस प्रकार की जो मानसिक अवस्था है उसे हमें पीछे छोड़ना है.
बिकॉज इफ वी वॉन्ट to fulfill Baba Saheb's dream, we need to break out of our own communities.
अगर हमें बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो हमें अपने जाति से मुक्त होना है.
Baba Saheb's dream was that he would start here at the Dikshabhumi.
बाबा साहब का जो सपना था वह दीक्षा भूमि से उसकी शुरुआत हुई.
Then he went to Chandrapur.
फिर वो चंद्रपुर गए थे.
Then he was going to go state by state, community by community, conducting conversion.
उसके पश्चात बाबा साहब हर राज्य में जाने वाले थे, हर जाति में, जातियों में जाने वाले थे.
And if he'd been able to do that, well, we'd have gone way beyond this present community.
अगर वे जिंदा रहते और उतना कार्य वह कर सकते तो आज का चित्र शायद अलग होता.
But Baba Saheb, well, he passed away too soon.
लेकिन बाबा साहब का बहुत जल्दी देहांत हो गया.
But still, the work can be done.
लेकिन फिर भी उस कार्य को किया जा सकता है.
We can do it.
हम लोग उसे कर सकते हैं.
We need to get rid of caste from our own minds.
उस जाति को हमने हमारे मन से उखाड़ फेंकना चाहिए.
I've always puzzled about caste.
मुझे यह जाति हमेशा ही संभ्रम में लाती है.
Well, in England we don't have caste.
इंग्लैंड में जातियां नहीं है.
I'm not saying English society is perfect by any means.
मैं इसका अर्थ यह नहीं कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजी समाज है वह बहुत आदर्श है.
We've got our own inequalities.
हमारे अपने असमानताएं वहाँ है.
But we don't have caste.
लेकिन वहाँ जातियां नहीं है.
No, we do have caste because we have a lot of Indians in England.
अब वहाँ पे जातियां है क्योंकि कुछ भारतीय लोग वहाँ है.
Because they import caste to England.
क्योंकि जाति वहाँ तक गई है अगर भारतीय लोग वहाँ जाते हैं.
But I wasn't brought up with caste mentality.
लेकिन जाति मूलक मानसिक अवस्था में मैं पला बड़ा नहीं हूँ.
So I've often asked, well, what is it?
तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यह क्या है.
And the conclusion I've come to is that caste is all about insecurity.
और अक्सर मेरा यही निष्कर्ष होता है कि जाति का जो संबंध है वह अपने असुरक्षितता के साथ है.
It's just like the monkeys in the forest.
वह वैसा ही है जो बंदर जंगल में है.
The jungle is dangerous.
अब जंगल जो होता है वो भयानक होता है.
There are other monkey tribes out there.
क्योंकि वहाँ अन्य बंदरों के समाज होते हैं.
So you gang together for protection.
तो आप इकट्ठा आते हैं उस समूह को सुरक्षित करने के लिए.
So at the bottom of the caste mentality is insecurity.
तो जाति के सतह में या उसके गहराई में अगर हम देखते हैं तो वह असुरक्षितता है.
Well, we should grow out of that insecurity.
तो उस असुरक्षितता से हमें ऊपर उठना है, उससे बाहर आना है.
You can stand up before anybody.
आप किसी के भी आगे खड़े हो सकते हैं.
You don't need to worry what they'll think of you.
आप इसके बारे में मत सोचिए कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे.
If you're confident yourself, other people will accept you.
अगर आप अपने आप में आत्मविश्वास से भरे हैं, आत्मविश्वास से पूर्ण हैं, तो और लोग आपको स्वीकारेंगे.
We must let go of this insecurity in ourselves.
हमारे अंदर जो यह असुरक्षितता है, इस असुरक्षितता से हमने मुक्त होने चाहिए.
You need to look deeply into yourself to see this. You need to look deeply into yourself to see this.
हमने अपने अंदर गहराई से झांकना चाहिए इस असुरक्षितता से मुक्त होने के लिए.
So if we want to complete Baba Saheb's dream of liberty, equality and fraternity, we need to get over our own deep insecurity, our social insecurity.
अगर हमें बाबा साहब का समता, स्वतंत्रता और बंधुता मूलक सपना पूर्ण करना है, तो हमने हमारे असुरक्षितता को पूर्ण तरीके से मुक्त करना चाहिए, जो सामाजिक असुरक्षितता भी हम महसूस करते हैं.
We can go to anybody.
हम किसी के भी पास जा सकते हैं.
We can take the dhamma to anybody.
हम धम्म को किसी को भी बता सकते हैं.
If you've got the dhamma, you can give it to others.
अगर आपके पास यह धम्म है तो फिर आप किसी को भी दे सकते हैं.
What you know, communicate to others.
जो आप जानते हैं वह औरों को आप संवादित कर सकते हैं.
The dhamma is so sensible.
क्योंकि धम्म बहुत ही संवेदनशील है.
I did a retreat recently and people from many different communities were there.
अभी मैंने एक शिविर लिया था, वहाँ भिन्न समुदाय के, जाति समुदाय के लोग थे.
And one person who is not from a Buddhist background came to me afterwards.
और उसके पश्चात जो बौद्ध नहीं थे, ऐसे अन्य जाति से व्यक्ति मेरे पास आए.
And she said, I've been to many different camps.
और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत शिविरों में गया हूँ.
Art of living, this, that,
Art of living या और अन्य जो ऐसे शिविर होते, वहाँ मैं गया हूँ.
And she said that this time you didn't ask me to believe anything.
लेकिन इस बार मैंने यह महसूस किया इस शिविर में कि आपने मुझे यह आग्रह नहीं किया कि आप इसके ऊपर विश्वास रखिए.
You taught me how to look at my own experience.
आपने मुझे यह सिखाया कि मैं अपने अनुभवों को ठीक से कैसे देखूं.
And she said, if this is the Buddha Dhamma, this is what I want.
अगर यह बौद्ध धम्म है तो मुझे यही चाहिए.
The Buddha Dhamma is just about us as human beings.
बौद्ध धम्म उसका अर्थ यही है कि हम कैसे अच्छे मानव हो.
It's not about things you can't see and don't know and can't experience.
यह इसके बारे में नहीं है कि जिन चीजों को आप देख नहीं सकते, उसका अनुभव ही नहीं ले सकते.
You know, look, I've asked you here to do meditation.
मैंने यहाँ आपको ध्यान करने के लिए कहा.
I've asked you to watch your breath.
मैंने आपको आपके सांस के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा.
I haven't asked you to find God or anything like that.
मैंने यह नहीं कहा कि अपने अंदर भगवान को ढूंढिए.
I just asked you to develop Maitri.
मैंने केवल मैत्री का विकास करने की बात की.
I showed you how to do it.
और मैंने यह दिखाया कि इसको कैसे विकसित किया जाता
है. I showed you what I've been shown.
और जो मैंने किया वही मैंने आपको बताया.
It's all quite direct, quite in your experience.
यह सीधा अब हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है.
It's very accessible to any human being.
यह किसी भी इंसान को करने के लायक है.
It's obvious, it's immediately apparent.
क्योंकि यह स्वाभाविक है, यह आपके अनुभव में आप इसे तौल सकते हैं.
So you can just show people what is obvious.
तो आप लोगों को वही दिखाइए जो स्वाभाविक है.
That's the Buddha Dhamma.
वह बौद्ध धम्म है.
And many, many people will respond.
और बहुत सारे लोग आपको फिर प्रतिसाद देंगे.
First of all, of course, there are many people who have deep respect for Baba Saheb.
सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके दिल में बाबा साहब के प्रति गहरा आदर है.
Maybe in India there are 30 or 40 crore of people who see Baba Saheb as their leader.
इस देश में कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को अपना नेता समझते हैं.
From Kashmir to Kanyakumari.
कश्मीर से कन्याकुमारी तक.
From Punjab to Bengal.
पंजाब से बंगाल तक.
There are people who see Baba Saheb as their hope.
बाबा साहब को वह अपनी आशा समझते हैं.
But very few of them know that he became a Buddhist.
लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे बौद्ध बने.
They don't know why he became a Buddhist.
वे यह भी नहीं जानते कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों चुना.
They don't know what being a Buddhist means.
और उन्हें यह भी पता नहीं कि फिर बौद्ध होने का अर्थ क्या होता है.
Why not?
क्यों नहीं?
It's not their fault.
अब यह उनका दोष नहीं है.
Nobody's told them.
क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं.
Nobody's been to them and explained why it's important to become a Buddhist.
कोई भी उनके पास नहीं गया और उनको उन्होंने यह समझाया नहीं कि वे स्वयं बौद्ध क्यों बने.
So they say Jai Bhim, तो वे don't do what will bring victory.
तो वे जय भीम कहते हैं लेकिन उन्हें यही ज्ञात नहीं है, बताते नहीं है कि वो जीत कहां से आएगी.
They say Baba Sahib is a very good doctor.
वो कहते कि बाबा साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे.
But they don't take the medicine.
लेकिन वो दवा नहीं लेते.
So they won't change.
तो फिर वो बीमारी जाएगी नहीं.
Because nobody's given them the medicine.
क्योंकि किसी ने उन्हें वह दवाई या दवा दी नहीं.
That's our job.
तो यह हमारा काम है.
We mustn't just sit in Maharashtra.
तो आप केवल महाराष्ट्र में बैठे मत रहिए.
You Maharashtrians, you mustn't just sit in Maharashtra.
No, I didn't say. तो आप महाराष्ट्रियन लोग जो है केवल महाराष्ट्र में बैठे मत रहिए.
He's gone out now. He's gone to Andhra Pradesh.
तो मैं आंध्र प्रदेश में गया.
But we mustn't just sit at home.
तो केवल आप घर में बैठे मत रहिए.
We must go. Even in Maharashtra, there are many people who see Baba Sahib as their leader.
बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले महाराष्ट्र में कई लोग हैं.
They don't know why.
लेकिन वह उन्हें पता नहीं है कि वे क्यों उन्हें अपना आदर्श मानते हैं.
They don't know why Baba Sahib became a Buddhist. Maybe they don't know that he did become a Buddhist.
और उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे बौद्ध क्यों बने या उन्होंने ऐसा चुनाव क्यों किया.
I was in a hotel in Delhi.
मैं दिल्ली में एक होटल में रुका हुआ था.
And whenever I go somewhere, I always put a statue of the Buddha and often a picture of Baba Sahib.
तो मैं किसी भी रूम में जब रुकता हूँ तो छोटी सी बुद्ध मूर्ति और छोटा सा बाबा साहब का रूप मैं वहाँ रखता हूँ.
I haven't got a Baba Sahib photo at the moment because I always give them away.
मैं हमेशा ही बाबा अभी मेरे पास बाबा साहब का छोटा सा चित्र नहीं क्योंकि मैं किसी को फिर वो दे देता हूँ.
But at that time I had a photo of Baba Sahib.
लेकिन उस वक्त मेरे पास छोटा सा बाबा साहब का चित्र था, फोटो थी.
And well, there were hotel servants there, huh?
होटल सर्वेंट. तो वहाँ के जो होटल में जो काम करने वाले जो नौकर होते हैं वह मेरे रूम में आते हैं.
And one of these servants came in the room with my breakfast.
तो एक दिन एक जो होटल का कार्यकर्ता है वह मेरे रूम में आया
मेरा नाश्ता में
नाश्ता देने के लिए.
And he saw on the television, because I always put on top of the television, there was Baba Sahib.
तो टीवी के ऊपर अक्सर मैं वह दोनों मूर्तियां रख देता हूँ.
And he said, "Oh, that is my God."
और उन्होंने कहा यह तो मेरे भगवान है.
He meant Baba Sahib.
इसका अर्थ बाबा साहब से था.
He was from a tribal community.
वो एक ट्राइबल का जाति से थे.
So I tried. मेरा हिंदी बहुत बहुत छोटा है. So I tried to talk to him.
तो मुझे हिंदी बहुत कम आती है लेकिन मैं थोड़ी बात करने की कोशिश की उनके साथ.
And I tried to find out what did he know about the Buddha.
तो मैंने खोजने की कोशिश की कि बुद्ध के बारे में वो क्या जानते हैं.
बुद्ध कौन है?
तो उन्होंने कहा बुद्ध कौन है मुझे पता नहीं.
He didn't know, huh?
वो जानते नहीं थे.
So yes, Baba Sahib is his hero.
तब
he doesn't know the Buddha.
अब सोचिए कि बाबा साहब उनके हीरो है लेकिन बुद्ध को वो नहीं जानते थे.
Well, brothers and sisters, that's our fault.
तो भाई और बहनों यह हमारी गलती है.
We have to take responsibility for that.
इसके जिम्मेदारी हमने उठानी है.
We haven't told him.
हमने उसे बताया ही नहीं.
We need to go to people and tell them.
तो हमें लोगों तक पहुंचना है और उन्हें यह बताना है.
We have to get out of हमारे लोग.
तो हमारे लोग जो ऐसा हम कहते हैं इससे बाहर हमें निकलना है.
We have to recognize that सब लोग हमारे लोग
हैं. हमें यह जानना जरूरी है कि सब लोग हमारे लोग हैं.
So this is we need to go to those people who see Baba Sahib as their leader and tell them why he became a Buddhist.
तो ऐसे सभी लोगों के पास जाना चाहिए जो बाबा साहब को मानते हैं और उन सभी लोगों को बताना चाहिए कि क्यों वे बौद्ध बने.
That's our first duty.
तो यह हमारा पहला कर्तव्य है.
But there are people from all communities throughout India who we could reach.
लेकिन सभी जातियां जो है भारत में उन सब लोगों तक हम जा सकते हैं.
There are many people in India today in the metros who don't even really know their caste background.
शहरों में ऐसे भी कई लोग हैं जो एक दूसरे की जातियाँ नहीं जानते.
They're in the middle classes. Many of them have left that.
जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वह इस बात की फिक्र नहीं करते, वह जानते नहीं हैं.
And if we talk to them about the Buddha Dhamma, they would respond.
अगर आप उनके साथ बौद्ध धर्म की बातें करते हो, वो प्रतिसाद करते हैं, वह सुनते हैं.
In Nagpur, in Pune, in Mumbai, in Delhi, there are people who would respond.
नागपुर, पुणे, मुंबई बड़े शहरों में आप ऐसी बातें कीजिए, लोग ग्रहणशील हैं.
To begin with, Baba Sahib won't mean much to them.
तो बाबा साहब को ऐसे बहुत सारे लोग नहीं मिले.
But after some time, they'll understand what he was, what he taught.
तो कुछ हद तक उन्हें शायद बाबा साहब समझ में ना आए उन्होंने क्या किया, लेकिन वो धीरे धीरे जानेंगे कि उनका मकसद क्या था.
The Dhamma is the medicine for all human beings.
धम्म एक ऐसी दवा है सभी मानवों के लिए.
We all have a disease.
हम सब में एक बीमारी है.
We have the disease of deep dukkha.
हमें दुख की बीमारी है, हम सब लोगों को दुख होता है.
We all suffering in this life.
इस जीवन में हम सब लोग पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं.
Whatever community we come from.
किसी भी जाति से आप क्यों ना हो,
dukkha is there.
दुख आपके पास है.
Whatever nation we come from, dukkha is there.
किसी भी राष्ट्र से आप आइए, आप दुखी हैं.
Whether we're rich, whether we're poor, dukkha is there.
अगर आप अमीर हैं, अगर आप गरीब हैं, दुख आपके पास है.
Educated, uneducated.
आप शिक्षित हो, अशिक्षित हो, दुख है.
Dukkha is there.
दुख है.
And the Dhamma is the medicine for our deepest sufferings.
और हमारी जो बहुत गहरे जो दुख है, उसके लिए धम्म दवा है.
We need to get that medicine to those who are sick.
तो यह जो दवा है उन सब बीमार व्यक्तियों के पास ले जाना हमारा काम है.
Many people will say, no, 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 I'm not sick.
बहुत लोग ऐसा मानते, नहीं नहीं मुझे कोई दुख नहीं है.
Anyway, I'm not taking your medicine, I'm taking this medicine.
मैं आपकी दवा नहीं लूंगा, मैं उसकी दवा लूंगा.
कोई बात नहीं.
कोई बात नहीं.
Just leave them for the time being.
अब उन्हें आप छोड़ सकते हैं.
But there are many, if you go to them in the right way and say, this is the medicine for your illness, they will take it gladly.
लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर इस बात को जानेंगे तो वह आपके बातों को सुनेंगे, आपकी दवा वो लेंगे.
But if they don't get the medicine, they can't take it.
अगर उनको अगर दवाई नहीं मिलेगी तो फिर वो दवा लेंगे कैसे.
So our duty as Buddhists, as Dhamma Sevaks, is to learn where people experience dukkha.
तो हमें यह भी सीखना है और जानना है, धम्म सेवक अगर हम मानते हैं तो कहां पे दुख है इसे देखना है.
When you see where people experience dukkha, give them the medicine in that package.
तो जहां कहीं भी आप दुखी लोग देखते हैं तो उस पैकेज में आप उनको वह दवा दीजिए.
If you want to sell soap powder, you have to sell it in a way that people will take it.
तो अगर आपको
which powder? Soap powder.
अगर आपको कोई पाउडर बेचना है तो जिस आकर्षित ताक में आप उसे देंगे तभी वो लेंगे.
If you have a picture on the front of a soap packet with dirty clothes on it, will people buy the soap powder?
अगर कपड़े धोने का पाउडर अगर आप बेच रहे हैं और गंदे कपड़े आपने उसमें डाले तो कोई नहीं लेगा.
They won't buy it because it looks unattractive, huh?
क्योंकि वह आकर्षित नहीं होगा, लोग उसे खरीदेंगे नहीं.
So you have a picture of somebody wearing a beautiful white sari or something like that.
तो हो सकता है वो जाहिरात जो उसकी होती है वहाँ साफ साड़ी होती है.
And then people think, oh, that soap powder will make my sari beautiful and white, and me too.
तो वह ऐसा सोचेंगे कि यह जो पाउडर है यह मेरी साड़ी साफ करेगा और मुझे सफाई मिलेगी.
Or you put Shahrukh Khan on the front and then the men will think they'll be like him.
तो लोग शाहरुख खान को देखते हैं और अपने आप को वैसा समझ बैठते हैं.
Actually, men usually don't buy the soap powder, but that's another story.
अब जो पुरुष है वह कपड़े धोने का साबुन या जो पाउडर है कम खरीदते हैं, लेकिन वो दूसरी कहानी है.
Maybe something about equality there.
वहाँ पे समानता आनी चाहिए.
Anyway. If you want people to take something, you need to put it in a way that's attractive to them.
तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों तक वह अगर जाए तो उसे आप आकर्षित बनाना चाहिए.
You need to put it in a way that they can see it relates to them.
और आपने उस संदर्भ में उसे बताना चाहिए. कि जिस संदर्भ में वह समझे या उसे अपना पाए.
So our duty as Dhamma Sevaks is to take the Dhamma to people in the way that will reach them.
तो एक धम्म सेवक होने के नाते हमारा यह कार्य है कि जिस तरीके से वह इस बात को समझ सकते हैं उस जरिए से हमने उन्हें बताना चाहिए.
We need to learn to communicate to people in the best and most effective way.
सबसे प्रभावी और आसान तरीके से हम जो बता सकते हैं लोगों को उस भाषा में हमने वो बताना चाहिए.
This is what Baba Sahib would have done had he lived longer.
अगर बाबा साहब अधिक काल तक जीवित होते तो शायद वही कार्य वह करते.
बाबा साहब could have reached people from all walks of Indian life.
तो सभी जीवन में भारत के सभी जीवन तक बाबा साहब पहुंच पाते.
बाबा साहब इज नो मोर.
अब बाबा साहब नहीं रहे.
So that duty passes to us.
तो अब वह जिम्मेदारी आपके ऊपर है.
And we have to fulfill it as he would have done.
और हमें यह पूरी करनी है जैसे वो करते.
So this is our duty.
तो यह हमारा कर्तव्य है.
हमारे जिम्मेदारी है. We have to complete this task.
तो यह कार्य को पूरा करना है.
It's in our hands.
यह आपके हाथ में है.
We can't expect anybody else to do it.
अब किसी और की आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह यह कार्य करे.
And the first thing we must do is get rid of whatever of caste mentality we have.
तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी प्रकार की जाति की जो मानसिक अवस्था है उसको अपने मन से निकालिए.
We must get rid of that deep insecurity in our minds from which caste clinging comes.
उस गहरे असुरक्षितता से आप मुक्त हो जाइए जहां से मानसिक जाति की मानसिक अवस्था आती है.
We must really feel सब लोग हमारे लोग.
वाकई में आप महसूस कीजिए कि सब लोग हमारे लोग हैं.
सर्व लोग अपने लोग आहे. दिस इज our जॉब. एंड डू इट विथ कॉन्फिडेंस.
यह हमारा कार्य है और हमने इसे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए.
डू इट विथ प्राइड.
और इसे आप आत्मविश्वास स्वाभिमान के साथ कीजिए.
आई डोंट नो व्हाई द डम्मर हैज कम टू मी.
अब मुझे पता नहीं कि धम्म मेरे पास क्यों आया है.
आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन फॉर दैट टू कम टू मी.
अब मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो ऐसा दर्शन मुझे मिला.
बट नाउ इट्स इन माय हैंड्स.
अब यह मेरे हाथ में है.
नाउ इट्स इन योर हैंड्स.
अब यह आपके हाथ में है.
बट यू मस्ट हैंड इट ऑन.
लेकिन आपने उसे औरों तक पहुंचाना चाहिए.
So, brothers and sisters, I hope that we've got a much clearer idea of what a Dhamma Sevak is.
तो भाई और बहनों, शायद मैंने आपको स्पष्ट कल्पना दी कि धम्म सेवक होने का अर्थ क्या है.
I hope you have a strong feeling that you want to be a Dhamma Sevak.
और मुझे यह महसूस हो रहा है कि आप सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा धम्म सेवक बनूं.
And I hope that if you do feel you want to be a Dhamma Sevak, you will do what's necessary.
अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप धम्म सेवक बने तो जो उसके लिए आवश्यक है वह आप कीजिए.
If you want to do something, you must create the conditions for it.
अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो वैसी परिस्थितियों का आपको निर्माण करना होगा.
The conditions for being a Dhamma Sevak are knowing Dhamma.
अब यह ऐसा बनने के लिए जो परिस्थिति है वह है कि आपने धम्म को जानना चाहिए.
That you practice Dhamma.
और आपने इसका आचरण करना चाहिए.
That you enter a sangha.
और आपने संघ के पास आना चाहिए.
In that sangha you learn Dhamma and you practice Dhamma together.
और उस संघ के पास जाकर आपने धम्म को पढ़कर साथ में उसका आचरण करना चाहिए.
And then finally you share the Dhamma with others. You spread the Dhamma.
और अंततः आपने उस धम्म को औरों के साथ बांटना चाहिए.
And you make sure you've got the state of mind to spread Dhamma.
और इस बात की आप यानी सावधानी बरतिए कि वैसी मानसिक अवस्था आपकी हो.
And that means getting rid of any trace of caste insecurity.
इसका अर्थ यह है कि कोई भी छोटा सा अवशेष जाति का आपके मन में बचा हुआ नहीं होना चाहिए.
Gaining the courage to stand up in society as sab log.
समाज में यह आत्मविश्वास के साथ आप खड़े रहिए कि सब लोग मेरे लोग हैं.
Look at Baba Sahib.
अब बाबा साहब को देखिए.
He could roar his lions roar anywhere.
अपनी वो सिंह गर्जना जो है वो कहीं पे भी कर सकते थे.
I looked at the the records of the Constituent Assembly debates the other day.
मैंने अभी अभी जो Constitution या संवैधानिक समिति के जो records थे, जो पत्र थे, उनको मैंने पढ़ा.
Then you hear this this representative, that representative speaking. You hear this representative speaking, that representative.
तो आपने यह देखा कि इस प्रतिनिधि इस बात को बता रहा है, वह प्रतिनिधि उस बात को बता रहा है.
And then Baba Sahib gets up.
और फिर बाबा साहब खड़े होते थे.
And he speaks.
और फिर वो बोलते थे.
And it's like in the jungle.
ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मान लो जंगल में कोई बात होती है.
You know, in the jungle you get the deer, they make a noise. The harin make a noise. Huh?
तो जंगल में आपने देखा कि जो हरन हरिन जो होती है हिरण, वह हिरण अपने आवाजें करते रहती है.
You get the dogs make a noise. Huh?
और वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं वह आवाज करते हैं.
You get the peacocks make a noise.
और जो मोर होते हैं जंगल में वो आवाज करते हैं.
And then you hear the tiger roar.
और फिर आप देखते हैं कि शेर दहाड़ता है.
And when the tiger roars, everybody else goes quiet.
लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो सभी प्राणी शांत हो जाते हैं.
So when Baba Sahib roars in the Constituent Assembly, everybody is silenced.
तो इस तरीके से जब बाबा साहब ने संविधानिक सभा में अपनी आवाज उठाई तो सब लोग शांत होते थे.
Well, Baba Sahib was a human being.
बाबा साहब एक मानव थे.
Yes, he was a very great human being.
निश्चित रूप से वे एक महापुरुष थे.
But what he did, we can do.
लेकिन जो उन्होंने किया वो हम सब लोग कर सकते हैं.
We can roar the lion's roar of the Dhamma.
तो आप धम्म की सिंह गर्जना कर सकते हैं.
Every one of us can roar that lion's roar with pride, with confidence.
तो इस आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ वह धम्म की जो सिंह गर्जना है वह हम सब लोग कर सकते हैं.
And then everyone will hear the Dhamma.
और हर व्यक्ति धम्म को सुनेगा.
And if everybody hears the Dhamma, liberty, equality and fraternity will come close.
अगर इस धम्म को सब लोग सुनते हैं तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता आएगी.
The casteless society will come close.
जाति विहीन जो समाज है वह करीब आएगा.
So, brothers and sisters, thank you so much for listening to me over these 4 days.
तो भाई और बहनों, इन आने वाले 4 दिनों तक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.
We've touched on some very, very important subjects.
बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की.
And I hope that what I've said has been useful to you.
और मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैंने कहा शायद आपको कुछ उपयोगी होगा.
बहुत धन्यवाद. खूब धन्यवाद.
अभी अभी आपने सुभूति जी को सुना. यह आखिरी सत्र है इस श्रृंखला का या व्याख्यान मालिका का. तो आपके मन में कुछ सवाल अगर हो गए तो आप पूछ सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं. उसमें केवल एक कंडीशन है, एक ही शर्त है कि जो बोला गया है वही सवाल पूछिए. बिल्कुल कुछ भी आपके मन में आए वो मत पूछिए. विषय के अनुसार ही आप सवाल पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
Don't be shy.
शर्माइए नहीं.
सब एकदम सुस्पष्ट है? कुछ सुस्पष्ट नहीं है.
कोई सवाल नहीं है? यह आखिरी मौका है 10 करोड़ के लिए.
No, they're all clear. They're now all Dhamma Sevaks.
अच्छा.
Okay. ठीक है. So,
वो माइक है शुरू है. हाँ माइक है, माइक में दे बोला.
उपस्थित आहे त्या सर्वांना माझा आदरपूर्वक सत्कार करेन. आता आपण जेव्हा घरी म्हणा किंवा अशा सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये पंचशीलन आणि पंचशील आपण ग्रहण करतो आणि शेवटी पंचशील झाल्यानंतर साधू 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 असं त्रिवार म्हणतो, तर मला अजून म्हणजे साधू साधू म्हणजे काय त्याचा उलगडा झालेला नाही आहे. ह्या
संदर्भामध्ये
हे स्पष्टीकरण देतील अशी मी विनंती करतो.
तो उनका सवाल यही था कि त्रिशरण पंचशील के बाद साधु साधु हम कहते हैं उसका अर्थ क्या है.
साधु 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 मंजे का मतलब क्या. That's a good question.
यह अच्छा सवाल है.
The first thing is it doesn't mean sadhu with long hair and
इसका अर्थ साधु का वो जो संत महात्मा जो दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं उससे नहीं है.
It's completely different from that.
यह उससे भिन्न है.
It's a completely different etymology, comes from a different background.
इसका जो शाब्दिक जो अर्थ है उसका धातु मूलक जो अर्थ है वह दूसरा है.
But basically what you are saying is, I agree.
इसका अर्थ यही है कि मेरी इसके साथ जो कुछ भी मैंने कहा उससे सहमति है.
You're saying, I rejoice at what I've done.
आप ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया उससे मेरी सहमति है और मैं उसका आनंद व्यक्त करता हूँ.
In English, the best way of translating it would be well done.
English में जैसे हम well done कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने वही उसका अर्थ है.
बहुत अच्छा क्या है.
बहुत अच्छा किया.
बहुत अच्छा किया. Yeah, that's essentially what you're saying. बहुत अच्छा किया.
तो वही आप कहने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा आपने किया.
So in Buddhism, that's the traditional way we rejoice.
तो इस पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म में या बौद्ध परंपराओं में साधु कहते थे.
If you appreciate something, if you enjoy something, you shout sadhu sadhu sadhu.
तो कोई भी अच्छी बात अगर आप करते हैं तो आप साधु साधु कर उसका यानी उसकी सहमति दर्शाते हैं.
You know, in England we used to say hip hip hooray.
इंग्लैंड में हिप हिप हुर्रे कहते हैं.
But that's just a common English way.
अब यह बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है.
But this is the way that Buddhists, at least of Southeast Asia, will express that sort of rejoicing.
लेकिन जो एशियन जो देश है इन सब देशों में साधु वाद ऐसा कहते हैं.
So when you recite the precepts, you say those words, huh?
तो जब आप शील कहते हैं या पंचशील कहते हैं तो इन शब्दों को आप कहते
हैं. या
आप शरण गमन करते हैं तो आप इन शब्दों को कहते हैं.
That's quite significant.
यह बहुत महत्वपूर्ण है.
In fact, I'd never really thought about this, so I'm glad you said that.
मैं इसके बारे में सोचा नहीं लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे पूछ लिया.
You say these words, these very very deep words.
जब आप यह शब्द कहते हैं तो एक दृष्टिकोण से यह काफी गहरे शब्द है.
You're saying, I go for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha.
आप ऐसा कहते हैं कि मैं बुद्ध धम्म संघ का पालन करता हूँ.
You're saying that the Buddha, Dhamma and Sangha are the only things that I can have complete confidence in.
तो आप ऐसा कहते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ ऐसे तीन स्थान है जिसमें मुझे पूरा आत्मविश्वास है.
इट्स योर डेक्लरेशन ऑफ फेथ, योर डेक्लरेशन ऑफ वेयर योर कॉन्फिडेंस लाइज.
तो आपका जहां आत्मविश्वास है उसकी उसके बारे में आप जाहिर अभिव्यक्ति देते हैं.
यू नो दैट एवरीथिंग एल्स विल लेट यू डाउन.
आप जानते हैं कि हर चीज आपको नीचा करती है, निम्न दिखाती है.
यू कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल बिकॉज़ दे डाई.
आप अब लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका उनकी मृत्यु होती है.
Sometimes people let you down in life.
या कभी कभी कुछ लोग आपको जीवन में नीचा रखते हैं, निम्न स्तर पर ले जाते हैं.
All other beliefs, all other achievements let you down.
सभी जो हमारी उपलब्धियां है वह हमें नीचा दिखाती है.
You can have many letters after your name. Many qualifications.
बहुत सारी डिग्री आपके नाम के नीचे हो सकती है.
You can have much money in your bank account.
हो सकता है आपके बैंक में बहुत सारा पैसा आपके पास हो.
But when you die, you leave it all behind.
लेकिन जब आप मरते हैं तो हर चीज पीछे छूट जाती है.
So you cannot go for refuge to those things.
तो इन चीजों को आप शरण नहीं जा सकते.
Only the Buddha is a safe refuge.
क्योंकि बुद्ध एक सुरक्षित शरण स्थान है.
So that's what you're saying.
यह आप कहते हैं.
I know that this is the only thing that can make me happy, that can make me secure.
तो आप यह जानते हैं कि यह एक बात है जो मुझे सुरक्षित करेगी, मुझे आनंद देगी.
Then you're reciting the precepts.
तो फिर आप शील कहते हैं.
You're declaring your commitment to practicing a skillful life.
आपकी अपनी कटिबद्धता कुशल जीवन जीने के लिए आप जाहिर करते हैं.
So you're making clear your deepest beliefs.
तो आपके जो गहरे मूल्य हैं उनके ऊपर जो विश्वास है वह आप अभिव्यक्त करते हैं.
You're making a very deep commitment.
आप बहुत ही गहरी कटिबद्धता वहां करते हैं.
You're committing yourself to a path.
आप उस रास्तों को या उस मार्ग को अपनाते हैं.
And you rejoice.
और आप उसका आनंद उठाते हैं.
That makes you very happy.
यह आपको खुशी देता है, आनंद देता है.
So when you say sadhu, sadhu, you sadhu, you say wonderful, what a wonderful thing I've done.
तो आप तब यही आनंद भाव व्यक्त करते हैं साधु कहकर कि मैंने कोई अच्छी चीज की है.
You're saying I've done the best thing that a human being can do.
एक इंसान जो सबसे सर्वोत्तम या अच्छी चीज जो कर सकता है वह बात मैंने की.
साधु साधु साधु. So thank you very much for that question because I'd not thought about that before.
बहुत धन्यवाद देता हूँ यह प्रश्न पूछने के लिए कि मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं था.
I just say sadhu, 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 because that's what you do.
तो पारंपरिक रूप से जब आप कहते हैं तो बस वही आप साधु साधु ऐसा कहते हैं.
But you're saying I'm really happy to do this.
लेकिन आप तब यह कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ यह करने के लिए मैं आनंदित हूँ.
तथागत गौतम बुद्ध बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर आणि इथे जे प्रतिष्ठित सगळे लोक बसले आहेत सगळ्यांना माझा जय गुरु. साहेबांना मी एक प्रश्न विचारते. बाबासाहेबांच्या भगवान बुद्धांच्या वंदनेच्या पुस्तकामध्ये एक शब्द जो आहे ओम मने पद्मे हूं याचा अर्थ मला कळलेला नाही. मी अनेक लोकांना विचारलं आहे पण याचा अर्थ कोणी मला सांगितला नाही म्हणून मी तुमच्या चरणामध्ये येऊन तुम्हाला हा प्रश्न विचारत आहे.
Yeah, Bodha Chapter. Thank you.
Bodha Chapter.
बाबा साहब ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है. उस पुस्तिका में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे हुम यह लिखा है. तो बहुत लोगों को मैंने यह सवाल पूछा लेकिन मुझे समाधानकारक उत्तर नहीं मिला. इसका अर्थ क्या होता है आप मुझे बताएं.
Yes, so it seems that Baba Sahib was quite fond of that chant.
ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो वाक्य है यह बाबा साहब को बहुत पसंद था.
And it was in the puja book, the
Buddha puja part.
Buddha puja part.
जो
yes.
छोटी सी जो किताब बाबा साहब ने बुद्ध पूजा पाठ लिखी उस किताब में यह है.
And there are some other stories about Baba Sahib and this phrase.
तुम्ही बसा सांगत आहेत ते. तुम्ही बसा उभा तुमचे पाय दुखतील.
सो शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इट मीन्स.
नो शी इज सेइंग दैट आई कैन स्टैंड बिकॉज बाबा साहेब गेव मी अ स्ट्रेंथ.
यस सो So yes, there's other stories about Baba Sahib and Om Mani Padme Hum.
तो और भी कुछ कहानियाँ हैं इस वाक्य की ओम मणि पद्मी होम और बाबा साहब की.
There's the famous writer Mulk Raj Anand.
बहुत प्रसिद्ध जो लेखक है मुल्क राज आनंद उसके बारे में आप जानते हो.
Bengali, I think.
मुल्क राज आनंद.
Anyway, Mulk Raj Anand is a well-known writer.
तो मुल्क राज आनंद ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे या नॉवेलिस्ट थे.
They've written a very good novel in English, which I've read.
बहुत अच्छे नॉवेल या उपन्यास उन्होंने इंग्लिश में लिखे जो मैंने पढ़े.
And he reported that one day he was in Mumbai and he happened to meet Baba Sahib, who he knew.
एक दिन वो मुंबई में थे और बाबा साहब जब मुंबई में थे तो वह उनको मिलने गए.
And he said to Baba Sahib, Namaskar.
तो बाबा साहब को उन्होंने नमस्कार किया.
बाबा साहब said, no, I don't like to say namaskar.
बाबा साहब ने फिर कहा कि मुझे ऐसा नमस्कार करना अच्छा नहीं लगता.
I like to say, Om Mani Padme Hum.
और उन्होंने कहा कि ओम मणि पद्मे हुम कहना मुझे अच्छा लगता है.
And he spoke about that meaning that well, you're not bowing down in front of another person.
अब उसका अर्थ यह था कि नमस्कार करते हुए किसी के आगे झुकना मुझे अच्छा नहीं लगता.
You're recognizing that they're a human being, huh?
आप उनको केवल एक इंसान के रूप में ही देख रहे हैं.
Then I heard another story, which is told by, I think it's Nanak Chand Ratu.
Nanak Chand Ratu, जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने दूसरी कहानी बताई.
He took Baba Sahib the news that Gandhiji had been shot.
नानक चंद रत्तू ने उनको यह समाचार दिया कि गांधी जी की हत्या हो गई है.
And Baba Sahib immediately said, Om Mani Padme Hum.
और बाबा साहब ने तुरंत ओम मणि पद्मे होम कहा.
And then finally Shankaranand Shastri told a story.
और अंततः शंकरानंद शास्त्री जो उनके दूसरे निजी व्यक्ति थे उन्होंने वह एक बात बताई.
And he saw Baba Sahib with a mala.
उन्होंने कहा कि बाबा साहब बैठे थे.
And he asked him what he was doing.
और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं.
And Baba Sahib said he was reciting Om Mani Padme Hum.
और उन्होंने कहा कि मैं ओम मणि पद्मे होम इसका उच्चारण कर रहा था.
And he said that it was this that had kept him going despite all his illness.
और वो कह रहे थे कि मैं बार बार इसे कह रहा था जब मैं बीमार था.
So what does Om Mani Padme Hum mean?
तो अब इस संदर्भ के साथ साथ यह है कि ओम मणि पद्मे होम का अर्थ क्या है.
Well, let me first say what it doesn't mean.
सबसे पहले मुझे यह बताने दीजिए कि इसका अर्थ क्या नहीं है.
Because of course, Om you find in the old religion.
ओम हमें और भी धर्म में मिलता है.
But it's got a quite different meaning in Buddhism.
लेकिन बौद्ध धर्म में इसका या परंपराओं में इसका बहुत अलग अर्थ है.
What it refers to is when you say that word, you're thinking of the Buddha's enlightenment.
जब आप यह कहते हैं तो आप बुद्ध का जो संबोधि है उसके बारे में आप सोचते हैं.
You're not thinking of some god or a cosmic principle or anything like that.
ऐसी कोई भी दैविक शक्ति या जादुई शक्ति या भगवान या ईश्वर के बारे में आप नहीं सोचते.
You're thinking of the goal of this dhamma life.
यह जीवन का जो ध्येय है, धम्म जीवन का, उस ध्येय के बारे में आप सोचते हैं.
Then what about Hung at the end?
अब जो Hung है उसका अर्थ क्या होता है?
Well, Hung means that goal realized in you.
Hung का अर्थ यह होता है कि वह जो ध्येय है वह आप अपने आप में या अपनी क्षमताओं में देखते हैं.
So you've got the goal and you've got the goal realized.
तो आपने ध्येय को देखा और वो ध्येय को अपने क्षमताओं में देखा.
So what about money and padme?
अब मणि और पद्मे का अर्थ क्या है?
मणि मतलब मणि.
मणि का अर्थ मणि है.
पद्मे मतलब पद्मे.
पद्म का अर्थ पद्म है.
So money means a jewel.
मणि का अर्थ रत्न होता है.
पद्म means a lotus. कमल.
पद्म का अर्थ होता है कमल.
So what's this mean?
तो अब इसका अर्थ क्या है?
Well, it's a symbol for where enlightenment is to be found.
यह उसका प्रतीक है कि संबोधि को आप कहाँ खोजेंगे.
The lotus is our minds.
कमल का अर्थ यहाँ हमारे मन से है.
Our minds are like a lotus bud that's closed.
हमारा मन वैसा है लेकिन वह बंद है.
But as we practice skillful karma, the petals of the lotus open.
लेकिन जैसे आप प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, आपके मन के कमल की पंखुड़ियाँ खुलती है.
What do you find when the lotus opens?
लेकिन जब वह सारी पंखुड़ियां खुल जाती है तो आपको क्या मिलता है?
You find a jewel.
वहां पे आपको रत्न मिलता है.
You find the jewel of enlightenment.
वो जो संबोधि का जो रत्न है वह रत्न आपको मिलता है.
Of course, it's not literally that enlightenment is in here.
अब शाब्दिक रूप से संबोधि यहाँ पे अंदर है ऐसा नहीं है.
But it's by developing your mind that you arrive at enlightenment.
लेकिन आपके मानसिक विकास के साथ आप उस संबोधि को पाते हैं.
So when Baba Sahib said to Mukhraj Anand, Om Mani Padme Hum, what he was saying was, you can gain enlightenment like I can gain enlightenment.
तो जब यही अर्थ था जब बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम मुल्कराज आनंद को कहा कि आप भी उस संबोधि को पा सकते हैं जिस संबोधि को मैं भी पा सकता हूं.
You have the possibility of enlightenment just as I've got the possibility of enlightenment.
आपको भी संबोधि की या प्रज्ञा प्राप्त करने की वही संभावनाएं हैं जो मेरे में भी वही संभावनाएं हैं.
We're equal.
हम उस दृष्टिकोण से समान हैं.
Because every human being, regardless of caste or nation or gender, has that possibility of enlightenment.
किसी भी राष्ट्र का हो, जाति से हो, समाज से हो, हर व्यक्ति में वह संभावना या क्षमता है कि वह संबोधि को प्राप्त हो सकता है.
Enlightenment is the possibility of every human being.
संबोधि हर व्यक्ति के लिए संभावित क्षमता है.
So that's why he said, Om Mani Padme Hum. इसीलिए मुल्कराज आनंद.
इसीलिए मुल्कराज आनंद को बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे हुम कहा.
When Gandhi died, he said that.
जब गांधी की हत्या हुई तब उन्होंने कहा.
Well, we all know that Mr. Gandhi was Baba Saheb's great political adversary.
अब आप सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक संघर्ष में गांधी जो थे बाबा साहब के सबसे कड़े विरोधक थे.
But Baba Saheb remembered that Gandhi too had the jewel of enlightenment within him.
लेकिन बाबा साहब ने फिर भी यह सोचा कि गांधी के मन में भी इस संबोधि की क्षमताएं हैं.
It's as if at that terrible moment he acknowledged Mr. Gandhi's identity with him.
तो एक मानव होने के रूप से बाबा साहब ने उस भयानक क्षण में भी उनके बारे में वैसा सोचा.
This man who'd really, well, thrown off course his whole political program.
ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहब के सभी राजनीतिक जो योजनाएं थी उसको उन्होंने रद्द किया.
So the Pune Pact, Gandhi had ruined Baba Saheb's plans.
जो बाबा साहब की जो अच्छी योजनाएं थी पुणे पैक में गांधी ने उसे नष्ट कर दी, ध्वस्त कर दी.
And it was only Baba Saheb's great magnanimity that enabled him to let go of that.
और यह बाबा साहब की महानता थी कि उन्होंने उस वक्त भी उसे जाने दिया, वह क्षमाशील रहे.
So he's able to say Om Mani Padme Hum right at the end of his life.
तो उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने उसे मैत्री दिया. बाबा साहब ने कहा Om Mani Padme Hum.
Then when he's saying Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, that keeps him alive.
तो Om Mani Padme Hum अगर बार-बार वह अपने आप को कहते थे, वह बात उसको उनको जीवित रखती थी विधायक रूप से.
When you keep on remembering that you can grow towards enlightenment, that gives you strength.
अगर आप बार बार सजगता या जागरूकता रखते हैं कि आप संबोधि तक पहुंच सकते हैं, वह आपको जीवित रखती है.
Just as Maushi gained strength from Baba Saheb in her legs,
जैसे हमारे मौसी जी को पैरों में बल है बाबा साहब ने जो उनको दिया.
Baba Saheb himself gained strength from thinking of the Buddha.
और बाबा साहब को अपना जो बल था वह बुद्ध से आया, उनके बारे में सोच कर आया.
Despite his diabetes, despite so many much illness, he kept going.
कितनी भी बीमारियां बाबा साहब को थी, बाबा साहब वह उतना कार्य कर पाए.
So that's the significance of Om Mani Padme Hum.
तो यह अर्थ है Om Mani Padme Hum का.
You can use it if you like, don't have to.
अब आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है.
It's got nothing to do with mantras in any other religion.
मंत्र का जैसे अन्य धर्मों में हम सोचते हैं, इससे उसका वैसा कोई संबंध नहीं है.
And I hope that the explanation I've given makes that clear.
गौतम बुद्धा समोर भगवान शब्द का लावतात. Why we use a word Bhagwan before Buddha?
Well, the interesting thing is that Buddhists use this term Bhagwan before anybody else did.
ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखते हैं तो बौद्धों ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया बुद्ध के लिए.
Like much of modern Indian religion, it originated in Buddhism.
अन्य किसी धर्मों के तुलना में बौद्ध धर्म से इस शब्द की उत्पत्ति होती है.
So many of these terms had a different meaning in Buddhism.
लेकिन बौद्ध धर्म में इसका अर्थ अलग है.
So Bhagwan is said to be a term which means full of wonderful qualities.
भगवान का उस बौद्ध धर्म में अर्थ यह है कि सभी अच्छे गुणों से जो परिपूर्ण है
इतिपिसो भगवतो अरहं सम्मा सम्बुद्धस्स
अहम कहते हैं इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध
That means that the Buddha has so many wonderful qualities within him.
इसका अर्थ यह है कि बुद्ध में बहुत ही लक्षणीय ऐसे अप्रतिम गुण हैं.
He is shining with these wonderful qualities.
क्योंकि उनकी जो चमक है उनके अपने गुणों से है.
So when we say Bhagavan Buddha, we mean the one who has these wonderful human qualities.
तो जब हम भगवान कहते हैं बुद्ध को उसका अर्थ यह है कि ऐसा इंसान जिसमें ऐसे सुंदर गुण है
वी डोंट मीन भगवान
भगवान का अर्थ ईश्वर से या ऊपर बैठे हुए भगवान से नहीं है
बट एट द टाइम ऑफ द बुद्धा इट वाज द टर्म दैट वाज अप्लाइड टू हिम बिकॉज़ ही वाज सीन टू बी अ वंडरफुल मैन
तो बुद्ध के काल में यह शब्द का इस्तेमाल प्रयोजन बुद्ध के लिए किया गया क्योंकि इतने सुंदर गुण उनमें थे
But unfortunately in modern Indian languages it's changed its meaning and becomes to mean God.
लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं में इसका अपभ्रंश या अर्थ बदल चुका है और इसका अर्थ ईश्वरवाद से या ईश्वर से लोग मानते हैं
But the Buddha of course said he wasn't a God and didn't believe in all that.
और बुद्ध ने स्वयं ऐसा कहा कि मैं ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ और मैं स्वयं ईश्वर हूँ ऐसा उन्होंने नहीं कहा बाबा साहब बौद्ध धर्म के कौन से पंथ को मानते थे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान पंथ थे उसके कौन से पंथ में बाबा साहब गए
You got the question? Yeah, yeah. समझ लो well, Baba Sahib was asked that question on the morning of the 14th of October.
जब 14 अक्टूबर को उन्होंने धम्म दीक्षा ली उसी सुबह को बाबा साहब को यही सवाल पूछा गया था
And he was asked, well, which yana are you going to be joining?
तो बाबा साहब को यह पूछा गया कि आप किस यान में जा रहे हैं?
Are you going to be Hinayana or Theravada, Mahayana, whatever?
तो आप हीनयान में जा रहे हैं या महायान में जा रहे हैं?
But Baba Sahib said, "Well, no, we're just becoming Buddhists."
Baba Sahib ne kaha, "Main kisi yan mein nahi ja raha hu, main keval Baudh ban raha hu."
If you like, we could even say it's a Navayana.
Agar aap chahte hain, to aap ise Navayan keh sakte
hain. But I think by Navayana, he didn't mean just another yana.
Lekin Navayan ka unka artha aur koi naya sect ya panth hai, aisa nahi tha.
On another occasion, he said it's Buddhayana.
और वो कहते थे कि यह बस बुद्ध का यान है बुद्ध का पंथ है
He said, we're not getting involved in all those disputes from the past.
तो यह जो पुराने जो संघर्ष या वाद विवाद थे मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता
We're just Buddhists.
हम मैं केवल बौद्ध हूँ या हम केवल बौद्ध हैं
We're just followers of the Buddha.
हम केवल बुद्ध के अनुयायी हैं
And I think this is very, very important for us to remember.
यह बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए
And I think we should all stand by that.
और हम सब लोग इस बात से स्पष्ट होने चाहिए
We should all stand by simply being Buddhists.
एक बौद्ध होने के नाते ही हमने हमारा संबंध या पहचान रखनी चाहिए
The Buddhist tradition has a long, long history.
बौद्ध परंपराओं का बहुत ही गहरा और लंबा इतिहास है
So many words have been spoken.
बहुत सारे शब्द फिर बाद में आए
So much architecture has been built.
बहुत सारे शिल्पकलाएं उससे उभरी
So many different forms have developed.
बहुत सारे अन्य अन्य जो रूप है वो बाहर आए
That's all good.
वह सब अच्छी बातें हैं
They're all different expressions of the Buddha's understanding in different cultures, different times.
भिन्न भिन्न संस्कृति में या समय में वह अलग अलग अर्थ बौद्ध धर्म के लोगों ने लगाए
But we live now.
लेकिन हम लोग अभी आज जीवित है यहाँ
We live, need to live the Buddha's teaching now.
हमें बुद्ध की शिक्षाओं को आज के आधुनिक जीवन में जीना है
We don't live in Tibet.
अब हम तिबेट में नहीं हैं।
We don't live in China.
अब हम चाइना में नहीं हैं।
We don't live in the 12th century or the 10th century.
अब हम 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में नहीं हैं।
We live in the 21st century here now.
हम 21वीं शताब्दी में यहाँ हैं।
So we have to practice the Buddha Dharma for ourselves now.
तो बौद्ध धर्म का जो आचरण है आधुनिक जगत में आज कैसा हो यह हमें समझना है.
So we can respect all other Buddhists.
तो हम सभी बौद्धों का आदर कर सकते हैं.
We can rejoice in the great wealth of Buddhist history.
जो बौद्ध धर्म का जो इतना अमीर इतिहास है उस इतिहास का हम अभिनंदन कर सकते हैं.
But we don't have to follow any of those different schools and traditions.
लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी यान को या पंथों को हम उसका आचरण वैसा है जैसा ही करें.
We've got to practice here now.
अभी हमें आज इस वर्तमान काल में उसका आचरण करना है.
That's what I understand Baba Sahib to have meant.
मुझे लगता है बाबा साहब का यही अर्थ था. What is the difference between puja and vandana? And when we use the word puja, how it is different from other religion?
Essentially, puja and vandana mean more or less the same thing.
अब वंदना या पूजा इस शब्द का जो अर्थ है लगभग समान ही है.
Worship, puja is more connected with seeing and praising and expressing gratitude to whatever it is that you're worshipping.
तो जब हम वंदना या पूजा कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो गुण जो है उन गुणों को आप उसकी प्रशंसा करते हैं.
वंदना इज मोर टू डू विद बाउइंग बिफोर.
वंदना का अर्थ झुकना होता है.
But really, they have very much the same meaning.
लेकिन लगभग उनका समान ही अर्थ है.
So it doesn't matter much.
उसका ज्यादा फर्क नहीं है.
But what's the difference between puja in Buddha Dhamma and puja in other religions?
लेकिन क्या अर्थ है या फर्क है जब हम बौद्ध धर्म में वंदना कहते हैं और अन्य धर्म में जब इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं?
Well, of course, there are so many religions, and they all have their own ways of thinking.
अब बहुत सारे ऐसे धर्म है जिनके अपने तरीके हैं सोचने के या रखने के.
But in general, in many religions, when you do puja, you're asking a god to protect you or give you some benefit.
लेकिन प्रेयर वंदना या पूजा जिसे हम कहते हैं अन्य धर्मों में इसका यही मुख्य भाव होता है कि आपकी वो रक्षा करे या आपको कुछ वो लाभ दे या शुभ दे.
You're making offerings so that the god will pay attention to you and give you what you want.
तो आप भगवान को ऐसी कोई चीज या ईश्वर को ऐसी कोई चीज अर्पण करते हैं जिसके बदले में आपको कुछ फायदा होगा, आपको कुछ मिलेगा.
If you want to pass an exam, the god will help you.
और अगर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होता है होना है तो भगवान फिर आपकी मदद करते हैं.
If you want a child, the god will help you.
अब आपको बच्चा चाहिए तो फिर ईश्वर आपकी मदद करेंगे.
But you have to make the right prayer and make the right offering.
तो आपको सही पूजा करनी होगी और सही जो अर्पण करना है वही करना होगा.
That very generally is what often happens in other religions.
अक्सर सामान्य रूप से अन्य धर्मों में यह महत्वपूर्ण भाव होता है.
Well, that can't happen in Buddhism.
यह बौद्ध धर्म में हो ही नहीं सकता.
Because the Buddha can't do the work for you.
क्योंकि बुद्ध आपके लिए कार्य नहीं करते.
You remember Baba Sahib says he's marga data, not moksha data.
बाबा साहब बहुत स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है.
You have to walk the path.
आपको उस पथ पर, उस राह पर, मार्ग पर चलना है.
He can't do it for you.
वो आपके लिए नहीं कर सकते.
You can't say, oh Buddha, please take me to nirvana.
आप नहीं कह सकते कि बुद्ध मुझे निर्वाण तक ले जाइए.
The Buddha will say, okay, here I am, come.
तो बुद्ध अब ऐसा नहीं कहते कि हाँ मैं अब यहाँ बैठा हूँ, अब आइए.
Use your own legs.
आपके अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए.
So yes, you're not asking the Buddha to give you something, whether it's enlightenment or a child.
तो आप बुद्ध को ऐसा नहीं पूछ सकते या नहीं पूछते कि वह आपको पुत्र रत्न दे या आपको निर्वाण दे.
That's superstition.
यह अंधश्रद्धा है.
What you're doing is you're recognizing who the Buddha is.
आप क्या करते हैं कि आप यह पहचानते हैं कि बुद्ध कौन है.
you're recognizing how wonderful the Buddha is.
आप यह पहचानते हैं कि वे एक सुंदर मानव है.
You're recognizing what remarkable qualities he has.
उनके जो अप्रतिम गुण है उन गुणों को आप पहचानते हैं.
You're expressing deep gratitude to the Buddha for having taught.
और जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी है उसके प्रति जो आपके मन में कृतज्ञता का जो भाव है उस भाव को आप अभिव्यक्त करते हैं.
You're giving your expression to your feeling of great joy, great wonder, great gratitude to the Buddha.
तो जो आपका कृतज्ञता है जो उन्होंने एक ऐसी सुंदर शिक्षाएं दी है उसके प्रति आप कृतज्ञता का भाव दर्शाते हैं.
What do we always do at the beginning of any program?
किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में हम क्या करते हैं?
I know this. I've been many, many different places in Maharashtra.
बहुत सारे भिन्न-भिन्न जगहों पे महाराष्ट्र में मैं गया हूँ.
And what happens is, first of all, you'll be taken to the statue of Babasaheb.
क्या होता है? सबसे पहले आप बाबा साहब के पुतले के पास जाते हैं.
And you put a garland round Babasaheb's neck.
और बाबा साहब के गले में आप माल्यार्पण करते हैं.
You bow before Babasaheb.
और बाबा साहब के सामने आप प्रणाम करते हैं.
Everybody says Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim.
और हर व्यक्ति जय भीम ऐसे कहता है.
You don't think that Baba Sahib is going to do something for you.
अब यह आप नहीं सोचते कि वो जो मूर्ति है या पुतला या बाबा साहब है वह आपके लिए कुछ करेंगे.
You don't think that Baba Sahib is just going to give you everything you want.
अब हर चीज जो आपको चाहिए वो बाबा साहब लाकर देंगे ऐसा आप नहीं सोचते.
But you're garlanding Baba Sahib because you think he's so great.
आप इसलिए बाबा साहब को पुष्पहार देते हैं क्योंकि उन्होंने महान कार्य किया है.
You're garlanding him because you feel so much gratitude to him for what he's done for you.
आप इनके उन्हें पुष्पहार इसलिए देते हैं कि आपके मन में कृतज्ञता का भाव है. आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया.
That's puja.
वह पूजा है.
Yes, you don't call it puja, but that's what it is.
अब यह हम पूजा नहीं कहते लेकिन वही पूजा का अर्थ है.
So it's the same that we do for the Buddha.
यही हम बुद्ध के लिए भी करते हैं.
The same as Baba Sahib did for the Buddha.
यही बाबा साहब ने बुद्ध के लिए किया.
Every morning, his secretary Nanak Chand Ratu said he got up and he did Buddha Vandana.
तो हर सुबह में नानक चंद रत्तू जो है उनके निजी सचिव थे वह बताते हैं कि हर सुबह बाबा साहब बुद्ध वंदना करते थे.
But nothing to do with superstition.
लेकिन इसका अंधश्रद्धा से कोई संबंध नहीं है.
Unless you express your feeling, you won't have any energy. Unless you express your feeling, you won't have energy.
अगर जब तक आप अपने भाव को व्यक्त नहीं करते हैं तब तक आप में वो ऊर्जा नहीं आती है.
You know, so often when you hear people speaking, it's so dry.
अक्सर आप देखते हैं कि लोग बहुत ही शुष्क भाषा
so much just a head talking, no heart, huh?
इस्तेमाल करते हैं. दिमाग से बात करते हैं वहां दिल नहीं होता है.
But the heart is where the petrol is.
लेकिन दिल वह है जहां आपका ईंधन है.
Yes, the head tells you which direction to go in.
निश्चित रूप से आपका दिमाग बताता है कि किस दिशा से आपने जाना चाहिए.
You've got the map in your head.
आपके दिमाग में वह नक्शा है.
But the motor, the engine is in your heart.
लेकिन वह जो ईंधन है वह जो इंजन है वह आपके दिल में है.
So the study of the Dharma strengthens your sense of where you're going.
तो अभ्यास जो है या धम्म अभ्यास है वह आपके मस्तिष्क को या आपके बुद्धिमत्ता को तेज बनाता है.
Puja and Vandana give your engine power.
लेकिन वंदना या जब आप पूजा करते हैं तो वह आपके हृदय को या आपके भावनाओं को विकास करता
They
है.
Make you want to go.
वह आपको अधिक चलने के लिए प्रेरित करते हैं.
और कुछ? ठीक है और कुछ? थोड़ा आगे.
He says that there is a caste before birth. How that will get rid of when you have certificates, you write your caste.
Yeah, yeah.
So caste comes before your birth.
Hindi mein? Hindi mein?
जन्म के पहले ही हमें जाति मिलती है तो फिर उससे कैसे मुक्त हो?
Yes.
सर्टिफिकेट में आप जाति लिखते हैं.
Well, there's truth in that question.
इस प्रश्न में कुछ सत्यताएं हैं.
Because you're born in a particular family, you have a particular caste.
किसी विशेष परिवार में या जाति विशेष में आपका जन्म होता है, इसलिए आपको वह जाति मिलती है।
Because I was born in a particular country, I've got a particular passport.
मैं किसी विशेष राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे वैसा पासपोर्ट बनाना होता है।
But I don't have to be bound by the mentality of Englishness.
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी मानसिकता से मैं अपने आप को पेश आऊं।
I don't have to be limited by being English.
मैं जरूरी नहीं है कि मेरा जो यानी अंग्रेजी वाद है उसी से मैं अपने आप को संक्षिप्त करूं।
I can enter into a deep friendship with somebody who's got an Indian passport.
मैं जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उसके साथ भी मेरी गहरी मित्रता हो सकती है।
Very strange person with an Indian passport.
यह बहुत विचित्र इंसान है इंडियन पासपोर्ट के साथ।
But we can be friends, huh?
लेकिन हम मित्र हो सकते हैं।
Because I'm not going to be limited by being English, he's not going to be limited by being Indian.
तो मैं अपने आप को हमारी जो अंग्रेजी स्थिति या परिस्थिति है उससे संक्षिप्त में नहीं रखूंगा, और मैं अपने भारतीय वाद से अपने आप को लिमिटेड या संक्षिप्त संकुचित नहीं रखूंगा।
So you don't have to be limited by just the fact of your birth.
तो जो आपके जन्म के तथ्य है उन तथ्यों के द्वारा ही आप अपने आप को पहचाने जरूरी नहीं है।
Remember what Baba Sahib said at Yola.
याद रखिए बाबा साहब ने यवला में क्या कहा था।
I was born a Hindu, that was not in my power to choose.
बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू करके पैदा हुआ हूँ लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था।
I will not be born a Hindu. I will not die a Hindu.
लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।
I was born an Englishman.
मैं अंग्रेजी आदमी करके पैदा हुआ हूँ।
It wasn't my choice.
लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था।
But I'm not going to die an Englishman.
लेकिन मैं अंग्रेजी व्यक्ति करके मरूंगा नहीं।
I'm going to die as a citizen of the world.
मैं इस विश्व का नागरिक करके ही मरूंगा।
I'm as much an Indian as an Englishman. I'm as much an Indian as an Englishman.
मैं भारत में एक अंग्रेजी व्यक्ति करके ही जाना जाता हूँ।
I've eaten enough mirchi to be an Indian.
लेकिन मैंने इतनी मिर्ची खा ली है कि मैं एक भारतीय हो सकता हूँ।
I've been bitten by enough Indian matcha to be an Indian.
अब बहुत भारतीय मच्छरों ने भी मुझे काटा है जो मैं भारतीय हो सकता हूँ।
So it's the same with caste.
तो यही जाति के साथ है।
I was born into this jati.
मैं इस जाति में पैदा हुआ।
But I will not die just limited by that jati.
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी जाति के रूप में संक्षिप्त होकर आप मर जाएं।
Yes, when I come into India, I have to show my passport.
निश्चित रूप से भारत में आता हूँ, मुझे पासपोर्ट दिखाना होता है।
Yes, when you go to college, you have to show your caste certificate.
जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट दिखानी होती है।
But don't be limited by that.
लेकिन उससे ही आपकी पहचान है ऐसा नहीं है।
You can have the piece of paper of the caste but don't have the mind of the caste.
आप जाति का कागज रख सकते हैं लेकिन जाति भरा मन मत रखिए। मुझे लगता है यह पर्याप्त प्रश्न है। बहुत सारे सवाल होंगे भाई और बहनों, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। हमारे पास समय की कमी है। मैं आशा करता हूं कि अगले बौद्ध महोत्सव में अधिक संख्या में लोग सुबुति को सुनने आएंगे और उस जाति विहीन मन को निर्माण करेंगे, उस जाति विहीन मन से जाति विहीन समाज को, जाति विहीन राष्ट्र को निर्माण करेंगे।